نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاطر آیت نمبر 15 سے 30 تک کریں گے. دیکھتے ہیں تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس, اے تمام لوگوں, ہر ایک انسان کو مخاطب کیا گیا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر, اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, وہ کالا ہے یا گورا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, بچہ ہے یا بوڑھا ہے, وہ کسی رنگ و نسل کا ہے, کسی بھی زبان کو بولنے والا ہے, ہر انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انتم الفقراء, سبحان اللہ, تم سب محتاج ہو, تم سب فقیر ہو, کس کے, اللہ, اللہ کے, اللہ کی طرف تم سب فقیر ہو. انسان کو یہ بات ماننی اتنی مشکل لگتی ہے کہ میں محتاج ہوں. کوئی بھی کسی انسان کا محتاج نہیں ہونا چاہتا, محتاجی کو ہر کوئی ناپسند کرتا, لیکن ایک محتاجی ایسی ہے جو قابل فخر بھی ہے اور ہر انسان اس میں مبتلا ہے, اور وہ محتاجی کیا ہے, اللہ کی محتاجی. یہ محتاجی کب سے شروع ہوتی ہے, یہ نہیں کہ جب ہم دنیا میں آئے تب سے شروع ہوئی, جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا تب بھی وہ محتاج ہے. کیسے, ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی, اللہ ہمیں فلاں ڈیٹ, فلاں دن, فلاں زمانے میں, ان لوگوں میں, اس گھرانے میں, اس خاندان میں پیدا فرمانا, یہ کسی نے ہم میں سے درخواست نہیں دی, مرد بنانا کہ عورت بنانا, گوری بنانا کہ کالی بنانا, مسلمان بنانا یا مسلمان کے علاوہ کسی اور گھرانے میں پیدا فرمانا, کسی نے بھی نہیں دی. تو ہم اس میں محتاج, اتنے بڑے ہم محتاج ہیں کہ ہم اس چیز پر بھی قادر نہیں ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمیں, ہم نے درخواست دی ہوئی ہے ہمیں فلاں وقت میں پیدا کیا جائے, فلاں زمانے میں ہمیں بنایا جائے. ہماری پیدائش میں ہم محتاج, ہم دنیا میں آئے پھر بھی محتاج. آپ کو پتا ہے بچہ آتا ہے تو کس کس چیز کا نہیں محتاج ہوتا, ہر ہر چیز کا محتاج ہے. ایون یہ کہ اس کو کوئی کروٹ دے دے اس کا بھی محتاج ہے, ایون اس کے آگے دودھ کی بوتل بھی رکھ دیں تو وہ اس چیز کا بھی محتاج ہے کہ کوئی منہ میں ڈال دے, اتنا محتاج ہوتا ہے. تو بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب ہم کسی کے محتاج نہیں رہے, خاص طور پہ اگر مال و دولت کی ریل پیل ہے, خاص طور پہ اگر کوئی چاہنے والے خاندان اور دوست احباب اور یہ سب ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب محتاج نہیں ہیں. حالانکہ انسان تو ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے, ہر آن اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اس سے زیادہ کیا بڑی محتاجی ہو سکتی ہے کہ یہ جو سانس ہے, باقی تو چیزیں چھوڑیں, یہ جو سانس ہے اس کے بغیر انسان چند شاید منٹ کے سوا زندہ نہیں رہ سکتا, چند شاید منٹ زندہ رہ لے. یعنی ہر آن ہر منٹ وہ محتاج ہے کہ سانس اندر بھی جائے اور باہر بھی آ جائے. وہ ایون پلک جھپکنے کا محتاج ہے کہ میری پلکیں جھپکتی رہیں. آپ سوچتے ہیں کہ آپ جھپکتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ میری اور آپ کی طاقت ہے. یہ ایک بیماری ہے جس میں انسان پلک جھپک نہیں سکتا. پتا ہے کسی کو یہ بیماری تھی کہ اس کی, وہ بڑا امیر آدمی تھا, ابھی میرے سامنے اس کا نام نہیں ہے یہاں کا, تو اس کی صبح کو اس کے خادم اس کی آنکھوں کو کھول کے اور اس کی, یعنی یہ جو وہ پپوٹا ہے اس کو کھول کے ٹیپ لگا دیتے تھے, اور جب اس نے سونا ہوتا تو کھول دیتے تھے, بند ہو جاتی تھی. وہ کہتا تھا میں اپنی پوری دولت دے دوں ہر ایک دفعہ مجھے آنکھ جھپکنے کی لذت مل جائے کہ میں خود جھپک سکوں. آپ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے. किस बात पे मान है फिर, और आगे चलते जाए। भाई हमने सोचा कि हम हमारे पास मालो दौलत है, हमारे फ्रिज भरे हुए हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, औलाद है, सब सही अच्छा चल रहा है, हम अच्छे जगह पे रह रहे हैं, तो हम मोहताज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं हमें अल्लाह की क्या जरूरत है, भाई तुम अल्लाह अल्लाह करो, तुम्हें तो कोई जरूरत होगी, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। एक औरत ने कहा, मैंने तो अल्लाह से कभी कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं। अल्लाह अकबर। हालांकि इंसान तो इस चीज का भी मोहताज है कि जो कुछ तेरे पास है वो बाकी रहे, एक आन में अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ फना कर दे और तुझे वहां पे ले आए जहां पे तूने कभी सोचा भी ना था, तो हर चीज बरकरार रहे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जिनके पास जितना ज्यादा है वो तो उतने ही ज्यादा मोहताज है। वो बेवकूफ ये समझते हैं कि हम मोहताज नहीं है, वो उतने ही ज्यादा मोहताज है। वो कैसे? वो गाड़ी के मोहताज, वो पैदल चल ही नहीं सकते, उनसे तो जहां तक जाए तो हांफने लगेंगे। वो एसी के मोहताज, वो एसी के बगैर नहीं रह सकते, उनका एसी बंद हो जाए तो वो कोई काम ही नहीं कर सकते। वो चाय के मोहताज कि चाय ना मिले तो जी सर में दर्द हो गया। वो अच्छे खाने के मोहताज कि अच्छा खाना ना मिले तो वो तो बासी खाना ही नहीं खा सकते, वो तो कल का पड़ा हुआ खाना आज नहीं खा सकते, उन्होंने कभी खाया ही नहीं। वो बिजली के मोहताज, बिजली के बगैर नहीं रह सकते, वो उनका तो सारा काम ही ठप हो जाता है, कहते क्या करें। वो नर्म बिस्तर के मोहताज, तो जमीन पे कभी सोए ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं जमीन पे सोना क्या, उनको तो सारी रात नींद नहीं आएगी। वो तकिए के मोहताज, तकिए के बगैर जी हमें नहीं नींद आई ना, हमने तो कभी ऐसे रहे ही नहीं। तुम तो ज्यादा मोहताज हो। वो जिसको तुम समझते हो ये मोहताज है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं, जो झोंपड़ी में रहता है, वो तो फिर भी मच्छर में, मक्खी में, गर्मी में, धूप और छाऊं सब में वो चलता रहता है। तुम तो ज्यादा मोहताज हो, तुम्हें तो कांटा भी चुभ जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम तो इतने ज्यादा मोहताज हो। तो जो अमीर है वो ये ना समझे कि मैं कम मोहताज हूं, नहीं, वो तो सबसे ज्यादा मोहताज है। हम सोचते हैं कि वो जो गरीब कंट्रीज में रहने वाले, वो अफ्रीका के किसी उसमें रहते हैं, वो तो मोहताज है, और हमारे पास तो सब कुछ है, हमें तो कुछ ज्यादा अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह को मनाने की, उसको राजी रखने की जरूरत नहीं, हमें ज्यादा जरूरत है, हम तो एक कदम नहीं चल सकते। हमें तो हर वक्त में ये कोशिश करनी है और ये सोचना है कि अल्लाह ताला तू हमसे राजी रहना, अल्लाह तू नेमतों को हमसे छीन ना लेना। इंसान देखें, पैदा होते से लेकर जिंदगी के हर फेज में मोहताज है। इवन ये भी मोहताज है कि खाना मुंह में डाल लें तो खाना चबाया जा सके मुझसे, फिर मेरे अंदर निगला जा सके, फिर अंदर डाइजेस्ट हो जाए, मेरा पेट सही काम करे, आंते सही काम करे, जिगर सही काम करे, फिर सही से खारिज भी हो जाए, इसका भी मोहताज है। जैसे एक आदमी का पेशाब बंद हो गया, जब पेशाब बंद हुआ वो डॉक्टर के गया, उसने डॉक्टर ने उसका इलाज किया और बहुत लंबा बिल उसको हाथ में दे दिया, तब उसको एहसास हुआ और उसने कहा, या अल्लाह ये एक दफा मेरा पेशाब बंद हुआ है तो उसको जारी करने के लिए इतनी बड़ी मैं फीस भर रहा हूँ, सारी जिंदगी मेरे अल्लाह ने मुझे बगैर किसी फीस लिए, बगैर किसी मुतालबे के मेरा पेशाब जारी रखा, और मैंने आज तक उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और वाकई इंसान को देखें, कोई बीमारी होती है ना, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है तो कहता है अब मैं इतने शुक्राने के नफल पढ़ूंगा, अब मैं उम्रे पे जाऊंगा, अब मैं फलां करूंगा। ओ भाई, तेरे अल्लाह ने तो जो तुझे इतने अरसे से सेहत दिए रखी उस पे तो तुझे रोज ही शुक्र करना चाहिए था। तुझे एहसास भी तब हुआ जब अल्लाह ने बीमारी भेजी फिर सेहत दी, और जो इतने दिन बगैर बीमारी के जो तुझे चलाता रहा उसका नहीं एहसास हुआ। फिर पीने के मोहताज कि पानी पिया भी जा सके, फिर देखिए जायके के मोहताज। सुभान अल्लाह, आपको पता है जायका भी एक नेमत है कि इंसान को जायका आ सके, वो चख सके, उसकी जुबान पे लज्जत आए, उसको उसको मजा आए, उसको पता चले मैं क्या खा रहा हूं, इसके भी मोहताज है। फिर निगला जा सके, इसके भी मोहताज है। आपके पास हजारों तरह के खाने हो आपके सामने चुने हुए, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि वो खा ही ना सके तो क्या ऐसे खानों का फायदा। फिर अगर इसका जायका ही ना आ सके, आपको पता नहीं दाल में और गोश्त में क्या फर्क है, आपको यही नहीं पता चल रहा नमकीन और मीठे में क्या फर्क है, सब खाने एक ही जायके के लग रहे हैं, जैसे बीमारी में कई दफा जायका यानी खत्म हो जाता है, हमारे टेस्ट बड्स मुतासिर होते हैं, टेस्ट ही नहीं आता किसी चीज का, किसी खाने में भी नहीं मजा, कहते दिल ही नहीं करता खाने का, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आप ये देखें कि खड़े होने में मोहताज, एक एक कदम उठाने में मोहताज, यानी आप लिखते जाएं, आप लिस्ट बनाते जाएं, आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, आप लेटने में मोहताज, आपका जिस्म सही चलता रहे उसमें मोहताज, आपसे लोग मोहब्बत करें मोहब्बत के भी आप मोहताज हैं, वो भी इंसान के अपने बस में नहीं होती, अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है तो वो हमसे मोहब्बत करते, हमारे अपने नहीं बस का काम है। फिर आप हंसने में मोहताज हैं, क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वही हंसाता है और वही रुलाता है, सुभान अल्लाह। आप हंसने में भी उसके मोहताज हैं, आप सेहत में उसके मोहताज हैं, आपको जिंदगी मिली रहे उसमें मोहताज है, आपकी औलाद हो जाए इसमें मोहताज है, औलाद ठीक ठाक पैदा हो जाए इसमें मोहताज है, अमन अमान के मोहताज है, औलाद की किस्मतें सही हो जाए इसके मोहताज है, औलाद सही रास्ते पे चले इसके मोहताज है, हिदायत के मोहताज है, कहां कहां तक मैं कहूं, किस किस चीज के मोहताज नहीं है, कदम कदम पे मोहताज है। ये बताएं कौन सा ऐसा पल है जिसमें हम कह सकें, ये दावा कर सकें, इस वक्त में मोहताज नहीं। देखें जो आंख के झपकने तक का मोहताज है और क्या आप उससे ज्यादा कह सकते हैं, सुनने के हम मोहताज के अल्लाह हम सुनते रहे, हम देखने के मोहताज, और सिर्फ देखना ये नहीं, देख तो वो भी रहा है जिसको सब ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, कलर ब्लाइंड होते हैं लोग, नजर तो उसको भी आ रहा है, अल्लाह हमें रंग भी नजर आए, अल्लाह हमें डिस्टेंस भी पता चले ये चीज कितनी दूर है और ये कितनी करीब है, ये ना हो के डिस्टेंस ही ना पता चले, मैं उठा रही हूँ वो चीज वहां पड़ी है मुझे लग रहा है यहाँ पे करीब ही पड़ी है, इसमें भी मोहताज है, अल्लाह दूर की चीज भी वाजे नजर आ जाए, अल्लाह जो करीब लिखा हुआ ये भी नजर आ जाए, कितना कुछ है। दिमाग चलता रहे इसके भी मोहताज है, दिमाग ही खराब हो जाता है, दिमाग ही उलट जाता है, अकल ही मारी जाती, इसमें भी मोहताज, कोई चीज पकड़ सके उसके मोहताज, जुबान से बोल अदा हो जाए इसके मोहताज, जुबान सही चले हकलाए नहीं इसमें भी मोहताज है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो इनमें कोई चीज भी बिगाड़ दे तो कहां से लाओगे, कहां से लाओगे, वो जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, हम इस सब में उसके मोहताज हैं। कोई कह रहा है अल्लाह बेटी दे दे, बेटे ही होते जा रहे हैं, कोई कह रहा है अल्लाह बेटा दे दे, बेटियां ही होती जा रहे हैं, किसी को दोनों दे रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं दे रहा, वो तड़पता है अल्लाह कुछ तो दे दे, कुछ भी नहीं, कोई कह रहा है अल्लाह बस कर दे अब नहीं चाहिए, और होते चले जा रहे हैं। इंसान देखिए फिर मोहताज ही तो है ना, उसका बस चले तो वो अपना सब कुछ ठीक कर ले, देखिए ना इंसान देखे किधर जाए वो, अब वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कैद में है, तो ऐसे लगता है चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई और पावर है उसके ऊपर जो कंट्रोल करती है, और इंसान सोचता है कि मैं इन कंट्रोल हूं, मैं जो मर्जी करूं, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि तुम उगाते हो या अल्लाह उगाता है, तुम ज़राअत करते हो या अल्लाह ज़राअत करता है, अंतुम तज़रऊना अम नहनु ज़ारिऊन, ज़ायके भरने रंग भरने ये सब किसके काम है, ये खुशबू कहां से आई, खुशबुएं डाल देना किसी चीज में और हमें खुशबू महसूस भी हो जाए, इसमें भी मोहताज है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी इतनी नेमतें जो हमें याद दिलाई है ना, इनमें ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है कि हम ये समझ जाएं कि हम कितने कुछ के मोहताज हैं, ये सब चीजें हमारी जरूरत है, इवन प्यास भी हमारी जरूरत है, हम इसके भी मोहताज हैं कि हमें प्यास लगा करे, क्योंकि प्यास लगती है तो पता चलता है कि हमें पानी की जरूरत है, अगर प्यास ना लगे पानी ना पिए, नहीं पिएंगे चंद दिनों में गुर्दे खत्म हो जाएंगे, हम इसके भी मोहताज हैं, अल्लाह अकबर। तो मोहब्बतें नफरतें कोई कुछ मिल जाना, कोई चीज काम आ जाना हमारे, ये सब चीजें ऐसी हैं, इज्जतें मिलना, पहले हमने इज्जत का भी पढ़ा, ये मिल जाना, ये इस सब में हम अल्लाह के मोहताज। तो हमारी मोहताजी तो कहीं खत्म ही नहीं होती। अब ये मुझे बताएं कि जो इतना फकीर है, इतना ज्यादा फकीर है, उसको कोई हक है कि वो सर उठाए उसके आगे जिसका वो फकीर है? यानी आप सोचें कि हम अल्लाह के दर के फकीर हैं। फकीर एक, और फकर जो होता है ना, फकर वर्ड जो है, ये भी समझ ले इसका मतलब क्या होता है। इतना गरीब, इतनी गुर्बत, इतना गरीब होना कि जिससे कमर टूट जाए मेहनत कर करके। अल्लाह ताला ने वो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल फरमाया कि इंसान इस कदर ज्यादा मोहताज है, इतना गरीब है अल्लाह के आगे। तो तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो, अल्लाह के आगे मंगते हो, तुम सब उसके आगे आजिज हो। चाहे कोई नबी क्यों ना हो, नबी भी आप देख लें सीरत उठा के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज ना होते तो क्यों दुआएं मांगते? अगर आपके इख्तियार में चीजें होती तो सारी खैर अपने लिए कर लेते, आपकी औलाद ना फौत होती, आपको जंगों में कोई जरूरत ना होती दुआएं मांगने की, आपके तो अपने हाथ में ही होना था। आज ये नाते मना लेते हैं सारे नबी तेरे दर के सवाली, उस सब किस नबी ने जाके दुआएं मांगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी हो? किसी नबी की दुआ बता दे कुरान में ऐसी हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं ना मांगी हो, ये दिखा दे हमें कहीं। सब मोहताज है, कोई अल्लाह वाला है, कोई वली है, कोई नबी है, इवन आखिरी नबी तक मोहताज है अल्लाह ताला के। तो अब जब इंसान ये मान लेता है कि हाँ मैं वाकई मोहताज हूं, जब उसको ये एहसास हो जाता है ना कि हाँ अल्लाह का दर ऐसा है कि जिस पे तो वाकई मेरी हर वक्त की यहां से जरूरत मेरी पूरी होनी है, मुझे तो सब कुछ यहीं से मिलना है, मुझे तो सब कुछ चाहिए, तो फिर क्या होता है? फिर वो ऐसी जात के आगे झुक जाता है। फिर आप देखें कोई फकीर आपके दरवाजे पर आता है तो धौंस जमा के नहीं कुछ कहता, वो बड़ी लजाजत के साथ, बड़ी इसके साथ आगे आपके बिच बिच के दुआएं दे दे के किसी तरह आपको खुश करने की कोशिश करता है। क्या एक रोटी रख दें उसके आगे, या चार पैसे निकाल लें आप अपनी जेब से इसके लिए सिर्फ? ना उस सोचो जो सारा कुछ का मोहताज है, हर चीज का मोहताज है, जिसका रुआं रुआं मोहताज है, रुआं रुआं वो इतना ज्यादा फकीर हो, उसको कैसी आजी शो करनी चाहिए बताएं? उसको कैसा होना चाहिए अल्लाह के आगे, जो तू खुद सांस भी नहीं तू ले सकता जी, कैसा होना चाहिए अल्लाह के आगे, जो तू देख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, तेरा अज़ा भी नहीं काम कर सकते, कुछ भी नहीं तेरा हो सकता, तेरा तो सारे काम बनने ही यहां से हैं। बताएं फिर इस फकीर की हालत कैसी होनी चाहिए जिसकी मोहताजी की कोई इंतहा ही नहीं है, जिसकी सारी जिंदगी कायम इसी पे है। हम सोचते हैं अल्लाह ताला ने बस पैदा कर दिया, आगे सारे काम हम खुद ही कर रहे हैं। नहीं, वो पैदा करने के बाद गाफिल नहीं हो गया, वो सब के काम चला रहा है। जो देखें सुभान अल्लाह कितनी ये अल्लाह ताला सारी तारीफ वाकई तेरे लिए है कि वो बंदा जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, एथीस्ट है, कहता मैं वो खुदा को मानता ही नहीं, सब कुछ खुद ही चल रहा है, वो भी उतना ही फकीर है। वो उसको भी सब कुछ अल्लाह से ही मिल रहा है, अल्लाह को पता है ये मुझे नहीं मानता, फिर भी वो अता किया जा रहा है उसको। और वो जो अल्लाह के सिवा औरों से मांगता है, अल्लाह को ये पता है मुझसे तो इसने मांगा भी नहीं है, उसको भी अल्लाह ही अता किए हुए है। और अल्लाह को ये भी पता है कि जब मैं इसको दूंगा तो फिर जाके सजदे भी किसी गैर के आगे ही करेगा, शुक्र भी गैर का ही करेगा, चढ़ावे भी गैर पे चढ़ाएगा है? उसको भी अल्लाह ताला अता फरमाता है, जबकि वो जानता है कि ये मेरे गैर के आगे झुकेगा। सुभान अल्लाह, ये है मेरा अल्लाह, सारी मखलूक को चलाने वाला वही, सारी कायनात को चलाने वाला वही। अगर वो गाफिल हो जाए, एक लम्हे के लिए भी गाफिल हो जाए, अल्लाह को, अल्लाह के पास गफलत नहीं है, मगर अगर वो मसलन छोड़ दे सब कुछ को, उसके हाल पे छोड़ दे, तो एक सेकंड में ये सारा निजाम दरहम बरहम हो जाए, एक दूसरे में टकरा जाए, खत्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर, ये है अल्लाह कि वो ऐसे थामे हुए हैं सारे निजाम कायनात को, और फरमाया वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, वो अल्लाह भी नियाज है, बेपरवाह, उसको जरूरत नहीं। तुम सोचते पता नहीं तुम्हें इसलिए अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बगैर तो दीन का काम ही नहीं चलना, मैं ना करूंगी तो पता नहीं होगा ही नहीं, मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं, मेरी कितनी बड़ी, मेरा कितना बड़ा एहसान है कि मैं ये टाइम दे रही हूं अल्लाह के लिए, निकाल रही हूं अपनी दुनिया में से, तो मेरा तो बड़ा एहसान हो गया। नहीं, अल्लाह गनी है, गनी यानी जिसको किसी की भी जरूरत नहीं, ना उसको अपनी हिफाजत के लिए, ना अपना निजाम चलाने के लिए, ना अपने कोई काम बनाने के लिए, ना अपने किसी नफे, उसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं। हदीस कुदसी है, ये मुस्लिम में हदीस है, और इस हदीस से आपको बड़ी अच्छी तरह इस आयत की समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया है। हम नहीं अल्लाह के ऊपर कोई चीज हराम कर सकते, अल्लाह ताला अपने लिए जो चीज चाहे हराम कर ले, उसने खुद अपने ऊपर जुल्म को हराम किया, इसलिए कोई बंदा ये नहीं कह सकता ये कोई जुल्म अल्लाह ने नऊज़ुबिल्लाह को मेरे ऊपर कर दिया, चाहे वो किसी भी हालत में हो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया, और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, तो एक दूसरे पे जुल्म ना करना। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो, मगर जिसको मैं सीधा रास्ता दिखा दूं, तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। सुभान अल्लाह, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो, मगर जिसको मैं खाना खिलाऊं, तो तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो, मगर जिसको मैं पहनाऊं, तो तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात खताएं करते हो, और मैं सब के गुनाह बख्शने वाला हूं, तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, देने वाला खुद फरमा रहा है, तुम मुझसे मांग के तो देखो। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते कि मुझे कोई जरर पहुंचा दो, कोई नुकसान कर दो, ना तुम मुझे कोई नफा पहुंचा सकते हो कि मुझे नफा पहुंचाओ, कोई बातें करके अल्लाह को कोई बड़ा फायदा दे रहा है, या कोई नाफरमान होके कोई अल्लाह को बड़ा कोई नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऐ मेरे बंदो, अगर अव्वल से आखिर तक सब इंसान और जिन तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी दिल वाले आदमी की तरह हो जाए, कौन है सबसे ज्यादा मुत्तकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, तो अगर सारे इंसान उनके बराबर हो जाए, इतने मुत्तकी हो जाए, तो फरमाया तो इससे मेरी बादशाहत में कुछ बढ़ावा नहीं होता, कुछ नहीं बढ़ेगा, जरा बराबर भी अल्लाह की बादशाहत में फर्क नहीं पड़ता कि कोई बढ़ ही जाए, चलो जी सारे इतने ही इबादत गुजार हो गए, पहले एक ऐसा था, अब करोड़ों अरबों खरबों ऐसे हो गए, तो नहीं, उससे अल्लाह की बादशाहत में जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता। ऐ मेरे बंदो, अगर अव्वल से आखिर तक सब इंसान और जिन तुम में सबसे ज्यादा बदकार दिल वाले आदमी की तरह हो जाए, मसलन शैतान इबलीस की तरह हो जाए, फिरौन की तरह, सारे ही के सारे जालिम और जाबिर अस्तगफिरुल्लाह ऐसे, अल्लाह माफ करे, काफिर हो जाए, तो इससे मेरे मुल्क में जरा बराबर भी कमी नहीं आती। ऐ मेरे बंदो, अगर अव्वल से आखिर तक सब इंसान और जिन एक मैदान में जमा हो जाए, और मुझसे मांगे और मांगे और मांगे, और मैं हर एक की मुरादें पूरी कर दूं, तो इससे मेरे खजानों में इससे भी ज्यादा कमी नहीं होती, जितनी के सुई को दरिया में, समुंदर में डाल के निकाल दिया जाए, तो दरिया का पानी कितना का काम होता है, सुई आप डुबोएं समुंदर में और समुंदर में से निकालें तो कितना काम होगा समुंदर का पानी, इतनी भी नहीं होती कमी। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए गिन गिन के रखता हूँ, और फिर तुम्हें वो पूरे पूरे दूंगा, बस जो भलाई पाए वो अल्लाह ही की हम्द करे, और जो इसके सिवा पाए वो अपने आप को ही मलामत करे। तो ये है, लंबी हदीस है मुस्लिम की, लेकिन बड़ी खूबसूरत हदीस है इस आयत की तफसीर के लिए, और इससे बड़ी अच्छी तरह हमें ये मालूम हो गया कि अल्लाह ताला को कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरी आपकी इबादत से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अच्छा कुछ लोग कहते हैं हम क्यों नमाज पढ़ें, अल्लाह को कहाँ कोई फायदा थोड़ी मिलता हमारी नमाज से। तो कितनी बेवकूफ़ी की ये बात है, हमाकत है। इंसान ये सोचे कि पता नहीं अल्लाह ने इसलिए हमें नमाजों का कहा है कि उसको कोई फायदा पहुंचना है और बाकी सारे लोग इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं कि कोई फायदा दे रहे हैं अल्लाह को। नहीं, वो कहते हैं हम जब अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचना तो फिर हमें नमाज का क्या जरूरत है। और नमाज तुम अपने लिए पढ़ते हो क्या? तुम फिर ऐसे रब के आगे झुक के ना रहोगे जिसने तुम्हारे पर इतने एहसानात किए? और देखें जब हम ये दुनिया में होते हैं फिर भी अल्लाह ही की दीवी ताकत से, सिर्फ अल्लाह की दीवी ताकत से हम चलो कोई हाथ पैर मार लेते हैं, वो भी अल्लाह ताला का इज़न होता है तो फिर हम सोच लेते हैं अपने जहन में कि पता नहीं हम खुद ही कर रहे हैं सब। लेकिन आप देखें मरने में भी हम अल्लाह के मौत आ जाए कि अल्लाह ताला कब मौत दे। कई लोग बिस्तरों पे रेड़ियां रगड़ते रहते हैं, मौत नहीं आती। और कईयों को वो उस पर वेंटिलेटर पे भी लगाया होता है तब भी मौत आ जाती है, डेड हो जाते हैं। तो मरने में भी मोहताज, उसमें भी अपनी मर्जी नहीं है, उसमें भी अल्लाह ही के आगे बेबस है बिल्कुल। फिर उसके बाद आप देख लें कब्र में मोहताज कि अल्लाह की रहमतें हो जाएं, कब्र कुशादा हो जाए, हिसाब किताब आसान हो जाए। कितने मोहताज हो है इंसान, किस बात की फिर तुम्हें अकड़ है? किस बात पे अल्लाह के आगे सर उठाते हो? तुम्हारा तो सर ही झुका रहना चाहिए। तुम किस बात पे अल्लाह के आगे तावीलें करते हो और अल्लाह से क्वेश्चन करते हो और अल्लाह के आगे बड़ी बड़ी बातें करते हो और बड़ी बड़ी बड़ा कुछ कहते हो? कैसे सेब दे सकता है तुम्हें? तुम तो फकीर हो, तुम फकीर हो, फकीर बन के रहो, इस फकीरी को समझो कि तुम कितने बड़े फकीर हो। हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, सोच लेना क्या है आपका, कुछ भी नहीं है आपका। एक पलक झपकने पे अल्लाह चाहे तो ये बिनाई है ना इंसान की, ये चली जाती है। ये बिनाई की खास तौर पे मैंने इसलिए बात की कि कोई किसी का ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा कि मतलब अंधेरा क्यों हो गया, लाइटें जलाओ। घर वालों ने कहा कि नहीं सब तो रोशनी है अच्छी भली, लाइटों की तो जरूरत नहीं। पता चला कि उनकी अपनी बिनाई बैठे बैठे चली गई, ब्लाइंड हो गई वो। तो तुम तो सब कुछ तुम्हारा मांगे तांगे का है, फिर तो जो जिसका सब कुछ मांगे तांगे का हो वो क्या अकड़ सकता है? वो क्या खुद को बड़ी चीज समझ सकता है? फकीर तो मिस्कीन होता है, वो तो आजिज होता है। जब आपके अंदर अपनी बड़ाई का एहसास आने लगे उसी वक्त सोच लें मैं तो फकीर हूं। और फकीर को बड़ाई जेब नहीं देती, तकब्बुर जेब नहीं देता। अल्लाह अकबर, अगर सिर्फ इन आयात को हम महसूस कर लेना और इनके ऊपर गौर करें, तफक्कुर करें, तो हम अल्लाह के फर्मा बरदार बन सकते हैं। हमें अपनी हकीकत समझ आ जाएगी, यकीन करें कि मैं कितनी ज्यादा मोहताज हूँ, मैं अपने आप को क्या समझे बैठी थी। फिर जिससे आपका कोई काम बनता हो, जहां से आपने कोई फेवर लेनी हो, उसके आगे कितने आप बिच बिच जाते हैं। तो यहां से तो सारे ही हमारे काम बनने हैं, इसी दर से तो बनने हैं। फिर कि यहां पे कैसा होना चाहिए मुझे, उस अल्लाह के आगे कैसा होना चाहिए? और वो हमीद है, आप अपनी जात में महमूद है। उसको ये भी नहीं जरूरत है कि लोग उसकी तारीफ करें। अल्लाह के लिए तुम कोई मजबूरी नहीं हो कि इनको मैं रखूं ही तो ये पता नहीं मेरे काम बनेंगे ना होंगे तो क्या होगा। नहीं, इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद। अगर अल्लाह चाहे तुम्हें ले जाए, तुम्हारी जगह एक नई मखलूक ले आए। तुम सोचते हो तुम अल्लाह की मजबूरी हो, ये है उसका गिना। अल्लाह के लिए सबको खत्म कर देना, सारे इंसानों को तबाह हो बर्बाद कर देना, ये कोई मुश्किल नहीं। वमा दालिका अल्लाह ही बेअजीज, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। आपने देखा कि कोई बस्तियां वाइप आउट हो गई, आप कुरान में उनके जिक्र पढ़ते हैं, वाइप आउट, एक बंदा भी नहीं रहा। अल्लाह को परवाह नहीं, कोई अल्लाह के काम नहीं चलते कि ये कोई काम चलाते हैं ये बड़े या इसी तरह, चाहे नेक हो चाहे पूरी दुनिया के इंसान हो, एक बस्ती आपने उसके तो वाकई सुने एक एक बस्ती के, लेकिन पूरी दुनिया को भी वो मिटा देना यार, एक वक्त ऐसा आएगा, कयामत आएगी जब सब मिट जाएंगे, सबको मौत आ जानी है, सबको, जिन इंस फरिश्ते जमीन आसमान और सूरज सितारे सबको मौत आएगी, तब भी उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। तो वो चाहे तो कोई तुम्हें मिटा के किसी और को ले आए, तो कोई भी अपने आप को कोई अल्लाह की जरूरत ना समझे, उसके दीन की जरूरत ना समझे, अपने आप को इतना बड़ा बना के पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह के दीन के मामले में भी इस बात समझ लें कि मैं नहीं करूंगी तो अल्लाह औरों को ले आएगा। मैं अगर लेजी होंगी, मैं अगर केयरलेस होंगी, मैं अगर नहीं आगे बढ़ के काम करने वाली होंगी और इसको सीरियसली लूंगी, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। और उसके बाद ये जो सबक है ना सूरह फातिर की, बड़ी जबरदस्त आयतें हैं एक के बाद एक। हमने पिछली दफा भी इतनी प्यारी आयत पढ़ी और अब यहाँ पे भी देखें, एक एक आयत ऐसी है कि इसके ऊपर अब हम सारी क्लास इसी पे हो जाए ना तो तब भी कम है, ऐसी आयत हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तज़िरु वाज़िरा तुम विज़रा उख़रा, नहीं बोझ उठाएगी कोई जान, कोई बोझ उठाने वाली जान कोई बोझ नहीं उठाएगी दूसरे का। ये कब होगा? क़यामत के दिन। इसलिए कि दुनिया में तो एक दूसरे के बोझ उठा लिए जाते हैं, कभी कोई ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर किसी के बाप ने, या आप आई हैं ग्रोसरी करके मसलन, आपके बच्चे आगे बढ़ के आपसे थैले पकड़ लेते हैं, आपके हस्बैंड पकड़ लेते हैं, आपका ने बच्चा बड़ी देर से उठाया हुआ है, आप अपनी साथ वाली को कहती हैं थोड़ी देर आप पकड़ लें मेरे बाजू थक गए, तो कोई दूसरा आपका बोझ उठा लेता है। लेकिन क़यामत का दिन वो होगा जिस दिन कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पे कौन से बोझ की बात हो रही है? गुनाहों के बोझ की। कोई किसी के गुनाहों के बोझ को नहीं उठाने वाला वहाँ पे। यानी एक ऐसा दिन आने वाला है कि जिस दिन हर कोई अपनी अपनी कामों में, अपनी अपनी चीज़ों में इतना मशगूल होगा, उसको अपनी इतनी पड़ी होगी कि कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा। वह इन तदो मुस्कलतुन, और अगर पुकारेगी कोई बोझ उठाने वाली जान इला हिमलीहा, अपने बोझ की तरफ, अपने उठाने की तरफ, उसकी तरफ जो उसने उठाया होगा, ला युहमल मिनहु शैउन, नहीं उठाया जाएगा उससे कुछ भी, कोई आके उससे थोड़ा सा लेके नहीं उठा लेगा कुछ भी, से मतलब है थोड़ा सा भी नहीं, यही उन अदना सा हिस्सा भी नहीं, नकिरा है। वलो काना दा कुर्बा, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तब भी वो किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाहु अकबर। इकरमा ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि उस रोज एक बाप अपने बेटे से कहेगा, तुम जानते हो मैं तुम्हारा कितना शफीक और मेहरबान बाप था? वो कहेगा हाँ बेशक आपने हमारे पर बड़े एहसानात किए और मेरे लिए आपने दुनिया में बड़ी तकलीफें काटी हैं। अब बाप कहेगा बेटा आज मैं तुम्हारा मोहताज हूँ, अपनी नेकियों में से थोड़ी मुझे दे दो, मेरी निजात हो जाएगी। बेटा कहेगा अब्बा जान आपने बहुत थोड़ी चीज मांगी, मगर मैं क्या करूँगा, आज अगर मैं आपको दे दूंगा तो मेरा भी यही हाल हो जाएगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ, उसको अपनी पड़ी होगी, मैं तो बच जाऊँ। फिर वो अपनी बीवी से कहेगा कि मैंने दुनिया में तेरे तू पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज मुझे थोड़ी सी नेकियों की जरूरत है, वो दे दो। वो भी वही जवाब देगी जो बेटे ने दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ना एक जगह, ला युजी वालिदुन वलदिही वला मौलूद, उस रोज ना कोई बाप अपने बेटे को अजाब से छुड़ा सकेगा ना बेटा बाप, वह हुआ जाज़े वालिदिही शैआ। हने देखें, चाहे कोई कितना भी चाहे, कितना भी वो कोई अगर इरादा कर भी ले कि मसलन है कि मैं आज काम आ जाऊं अपने बाप के थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकेगा क्योंकि गुनाह चिमटे होंगे उसको, वो अपने से उतार के किसी और के ऊपर नहीं डाल सकेगा। आज देखें मालदार लोग जो होते हैं वो बाज दफा अपने नौकरों वगैरह या कोई किसी को पैसे दे के कह देते तू हमारे जुर्म का इकरार कर ले अदालत में जाके और हमारी जगह तो जेल काट लो या सजा भुगत लो, हम तुम्हें इतने इतना पैसा दे देंगे तुम्हारी फैमिलीज को, और वो करने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा। कयामत के दिन कोई किसी और को ला के उसको फंसा के और खुद बच नहीं सकेगा। जो इंसान का अपना बोझ होगा वो उसको उठाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ना यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीहि व अबी व साहिबतिहि व बनी लिकुल इमरिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनु युग्नी। उस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, माँ से, बाप से, बीवी से, औलाद से, हर एक को अपनी इतनी पड़ी होगी, ऐसे आपा धापी का आलम होगा, ऐसे अपने काम में इतने मशगूल होंगे कि वो दूसरे से गाफिल होंगे। आप सोचें कि इंसान बोझ उठाए हुए होगा और उसके पास से उसका बाप गुजर रहा है, उसकी माँ गुजर रही है, उसके बच्चे गुजर रहे हैं, वो मदद के लिए पुकार रहा है कि मेरी आके कोई मदद करो, वो इससे भागते फिर रहे हैं कि ये ना हो कि कहीं अपना ही बोझ हमें ना पकड़ा दे, हमें इसका ना बोझ उठाना पड़ जाए। और ये यहाँ पे वलौ काना दा कुर्बा इसलिए कहा गया कि करीबी रिश्तेदार जो होता है, मसलन बेटा है, बाप है, माँ है, बहन भाई, यही होता है ना जब कोई मुसीबत होती है, मुश्किल होती है तो इंसान के यानी मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पे ये भी साथ छोड़ देंगे तो और कौन होगा जो कि इंसान के लिए मददगार साबित हो। अल्लाह ताला ने ऐसी हशर के मैदान की तस्वीर कशी की है कि खुद को यहाँ खड़ा करके देखो, जिनकी खातिर तुम आज बोलते हो ना क्या करें, बच्चों ने कहा था क्या करें, माँ बाप नहीं मानते क्या करें, हमें तुम्हारे बहन भाई नहीं छोड़ते क्या करें, इसका क्या करें उसका, इन लोगों ने तुम्हारे कुछ काम नहीं आना, तुम इनकी खातिर गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाओगे, कल ये बोझ तुम्हारे नहीं पकड़ेंगे। लोग आज धड़ल्ले से कह देते क्या करें, बच्चे ही नहीं मानते, बच्चों ने कहा, और कुछ कहते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं वो बच्चों को कहते हैं तुम हिजाब ना लो, अल्लाह को मैं खुद ही जवाब दे लूंगी, और तू दाढ़ी ना रख, मैं खुद ही वहां पे जाके तेरे लिए बोल दूंगी, मैं खुद ही अल्लाह को कह दूंगी। अल्लाह अकबर, उस दिन तो कुछ भी कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कौन किसके लिए कुछ बोलेगा। एक औरत कहा करती थी कि मैं अपने बच्चों को उठाती नहीं हूँ नींद से, मुझे अपने बच्चे इतने प्यारे हैं, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं सोते रहें फजर पे, इसलिए कि मैं खुद ही इनका अल्लाह के आगे जवाब दे दूंगी, इनकी नींद क्यों खराब करूँ मैं। अस्तग़फिरुल्लाह, तो वहां पे कोई किसी का जवाब नहीं देगा। तो इस धोखे में ना रहना कि इसकी खातिर कर लूँ, हस्बैंड की खातिर कर लूँ, फलाने की खातिर कर लूँ, इन्होंने वहां पर नजर भी नहीं आना, ये भागते फिर रहे होंगे कि कहीं हमें देख ना ले ये, और देख लेगी तो बुलाएगी। अल्लाह अकबर। अब वलौ काना दा कुर्बा में आप यहाँ पे अपने अपने करीबी रिश्तेदार जिनके ऊपर आपको बड़ा ही मान है, जो आपके ऊपर जान छिड़कते हैं ना आज, या जिनके कहने के ऊपर आप कुछ गलत काम करते हैं या आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखें इसके नीचे, वलौ काना दा कुर्बा, दा कुर्बा के नीचे लिखें उन सब के नाम, और फिर इस आयत को पढ़ें, चाहे फलां हो, चाहे फलां हो, चाहे फलां हो, इसने नहीं बोझ उठाना मेरा, मुझे अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। और आप ये देख लें कि हम कितना अपने लिए बोझ तैयार कर रहे हैं, ये जितने हमारे गुनाह होंगे उतनी बड़ी गठरी हमारे ऊपर लाद दी जाएगी, कितना बोझ उठाना पसंद करेंगे हम। आज तो अपना बच्चा भी उठाया होता है ना, उस पे भी हम थक जाते हैं, औलाद बड़ी प्यारी होती है अलग, लेकिन जिस दिन सूरज करीब होगा, इंसान हाँ परा होगा तपिश से, पसीनों में शराबूर होगा, नंगे पैर और नंगे बदन होगा, और रिश्तेदार कोई दिख भी रहे हैं तो वो भी पूछने को नहीं आ रहे, वो जो जान छिड़कते थे जिंदगी में और बहुत करीब थे हमारे, सबके वारी होते थे, वो आज ध्यान भी नहीं दे रहे। جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ انسان محتاج ہوگا، اسی دن وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے. کفار مکہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو، دیکھو تم اس دین کو چھوڑ جاؤ، ہمارا تمہارے اللہ کے آگے جواب ہم خود ہی دے دیں گے. آخرت آ گئی نا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے سر لے لیں گے. دیکھ لو کوئی اپنے سر نہیں لے گا، کوئی میرے کام آنے والا نہیں ہے. یاد رکھے یہ جو آج بہت تعریفیں کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے ان کی حقیقت. اللہ تعالیٰ دنیا میں کھول دیتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے ہائے واقعی قیامت کے دن کیا ہوگا اگر آج ہی انہوں نے منہ پھیر لیا میرے سے. اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، اولاد کا بھی دکھاتا ہے، بعض دفعہ ماں باپ کا بھی نظر آ جاتا ہے انسان. بعض دفعہ اس کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، پھر انسان کہتا خون سفید ہو گئے. اللہ دکھاتا ہے، دیکھو جن کے اوپر تم نے بھروسے کیے ہوئے تھے نا، یہ تو یہاں پہ نہیں تمہارے کام آئے، وہاں پہ کیسے آئیں گے. اور آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا بعض دفعہ انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی بیماری لگ جاتی ہے، ایسی وہ آپ کے کتنا بھی چاہیں کہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے، ہم یہ تکلیف اپنے اوپر لے لیں، وہ نہیں لے سکتے. اسی طرح گناہوں کا بوجھ بھی نہیں لے سکے. اور جہاں تک نیکیوں کی بات ہے، یہاں تو ڈاکے مار کے لوگ دوسروں کی کمائیاں ہتھیا لیتے، محنت کرے کوئی اور کھائے کوئی اور، اور وہاں پہ کوئی لوٹ مار نہیں چلنی کہ نیکیاں لوگوں کی چلو لے کے ہم اپنے پاس رکھ لیں اور ہمارا کوئی بوجھ ہی ہلکا ہو جائے. اور یہ آیات ایسی ہے جو پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، پچھلے پیغمبروں پہ بھی اسی طرح کی آیت اتری ہے، ولا تذروا وازرۃ وزر اخرى. اللہ نے سب کو اس چیز سے وارن کر دیا، یہ سوچ کے نہ آنا، اس غلط فہمی میں پڑھ کے نہ آنا وہاں پہ کہ وہاں پہ کسی سے لے لوں گی کوئی بات نہیں، آج اپنی مرضیاں کر لوں وہاں پہ، ادھار ادھار کر کے کسی سے پکڑ کے، یہاں سے پکڑ لیے پیسے وہاں سے، جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. نہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ بات ہے کہ آج اللہ کو راضی کرنا اور اپنا بوجھ ایسا نہیں اپنے لیے جمع کرنا کہ جو وہاں پہ جا کے ہمارے لیے مصیبت بنے. ایسے زندہ رہیں کہ جب مریں تو اللہ راضی ہو، تب ہم کامیاب ہیں. ورنہ ہمارے ارد گرد جتنا مرضی رشتے داروں کا، پیاروں کا جمگٹھا لگاؤ، کتنے بڑے بڑے بھی ہمارے جنازے ہو جائیں، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر جب کھلنی ہے نا تو وہاں پہ صرف میں اور میرا اللہ ہوگا اور کوئی بھی نہیں. آپ دیکھ لیں قبر میں جاتے وقت بھی کون کسی کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، قبر میں اکیلے ہی ڈالتے ہیں نا، یا کوئی اور ساتھ چاہتا ہے، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو باہر کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی اس کے ساتھ قبر میں نہیں داخل ہوتا، کتنا بھی روئیں. وہاں پہ مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ پھر اللہ کی رحمت کی. اور یہ رحمت نہ کمائی تو تباہی ہے پھر. اور اللہ تعالی نے فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. اے نبی، آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں. یعنی یہ جو باتیں ہیں، ان باتوں کے باوجود بہت سارے لوگ پھر بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہونا. کیوں نہیں اثر ہونا؟ اتنی بڑی بات کا بھی نہیں اثر ہوگا. جی ہاں، اثر صرف اس کو ہوتا ہے، نصیحت کو صرف وہ سنتا ہے، خبردار صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے. اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو، وہ ڈر. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ نہیں ڈرا سکتے، مگر صرف ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جس میں خدا خوفی ہو، یعنی رب کی عظمت کا احساس ہو، جس میں خدا خوفی نہیں، اس کو کہاں. آپ دیکھیں یہ آیتیں آپ کتنے بھی درسوں میں سناتے رہیں، کہتے رہیں، कोई असर नहीं होता लोगों को, वो क्योंकि खुदा खौफ ही नहीं है। हालांकि वो कितना बड़ा एक दिन आने वाला है इकरमा, जिसके बारे में कहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी के पीछे पड़ जाएगा और अल्लाह से कहेगा इससे पूछ तो सही इसने अपना दरवाजा मेरे ऊपर क्यों बंद किया था, क्यों बंद किया था इसने अपना दरवाजा मेरे ऊपर। काफिर मोमिन के पीछे लग जाएगा और जो एहसान उसने दुनिया में किए थे वो याद दिला के कहेगा आज मैं तेरा मोहताज हूं, मेरे लिए कुछ कर अब। आप देखें हम उस वक्त हो सकता है किसी मोमिन की वजह से किसी काफिर का अजाब थोड़ा सा कम हो जाए, मगर जहन्नुम से छुटकारा नहीं मिलेगा। बाप बेटे को अपने एहसान जताएगा, कहेगा राई के एक दाने बराबर मुझे अपनी नेकियों में से दे दे, वो नहीं देगा। इतने बड़े दिन के ऊपर भी कोई खबरदार ना हो फिर वो वजह क्या है? खुदा खौफी नहीं है, खुदा खौफी उठ चुकी है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा ना वो तो कांप जाएगा कि हाय कैसा दिन आने वाला। हम भी देखेंगे, हमें अगर हम ये कहते हैं हम अल्लाह से बड़ा डरते हैं, हम तो ऐसे वो हैं, लेकिन अगर ये बातें हमारे ऊपर कोई असर नहीं करती ना तो अब ज़मीर मुर्दा हो चुका है। इसका मतलब वह काम उसलात और वही आपके खबरदार करने पर कोई असर लेंगे, वही खबरदार होंगे जो नमाज की को कायम करने वाले हैं, कभी कभी पढ़ने वाले नहीं पाबंदी करने वाले हैं, क्योंकि नमाज ही वो चीज़ है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है, भलाइयों की तरफ लेकर आती है। और नमाज ही वो चीज़ है कि जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो उसको याद आ जाता है कि जैसे मैं आज अल्लाह के आगे खड़ा हूँ ना, इसी तरह एक दिन हशर का मैदान लगेगा और मैं ऐसे ही हाथ बांधे खड़ा हूँ। तो उसको नमाज 5 दफ़ा दिन में अल्लाह के आगे हाजिरी याद दिलाती है कि भूल ना जाना तुमने ऐसे ही अल्लाह के आगे भी खड़े होना। अल्लाहु अकबर। वमन तज़क्का फइन्नमा यतज़क्का लिनफ्सी, जिसने तज़किया इख्तियार किया ना उसने अपने लिए ही इख्तियार किया, यानी उसने अपने आप के साथ ही भलाई किया, अपने ऊपर ही एहसान किया, किसी और पे एहसान नहीं है। जिसने तज़किया कर लिया, तज़किया अब क्या चीज है, क्या चीज होती है नफ्स का तज़किया करना, और ये बड़ी अच्छी चीज है। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, वो कामयाब हो गया जिसने तज़किया कर लिया अपना। तज़किया, व्हाट इज तज़किया? तज़किया अंदर की सफाई, अपने अंदर को क्लीन किया जिसने, गुनाह छोड़े हैं अंदर से, खुरच खुरच के अपने दिल को साफ किया है। ज़ाहरी सफाई तो हम सभी करते हैं शावर लेकर, लेकिन जिसने अपने बातिन को साफ कर लिया ये है तज़किया। और ये एक बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि इंसान अपने अंदर जो है ना कम ही झांकता है, झांकने की फुर्सत ही नहीं। बाहर ही वो दीनदारी का एक हमने अपने ऊपर लबादा चढ़ाया हुआ कि हम बड़े दीनदार हैं, बस इसी को देख देख के हम खुश होते रहते हैं। हिजाब कर लिए, बाई पहन लिए, चलो कोई क्लासें भी ले ली, तो अल्लाह ताला वो कल जाके हमने यही दिखा देना है कि अल्लाह ये देख ले हम कितने दीनदार हैं, लोग भी हमें दीनदार समझने शुरू हो गए। लेकिन कभी हमने अपनी दीनदारी को गौर से देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नजर में तो दीनदार हैं लेकिन कुरान और सुन्नत की नजर में यही क्या वो दीनदारी है जो मतलूब है और मकबूल है, अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेड होगी? सोचने की बात है ना ये। कल हशर के मैदान में हमारी फलाह और निजात का फैसला इस बुनियाद पे नहीं होना कि मैं अपनी नजर में दीनदार थी कि नहीं और लोग मुझे मेरे कम्युनिटी के मुझे दीनदार समझते थे कि नहीं, इस बात पर नहीं फैसला होना। फैसला इस बेस पे होगा कि अल्लाह की नजर में मैं वाकई दीनदार थी भी या नहीं। हो सकता है दुनिया में हम दीनदार समझे जा रहे हो, सब लोग हमें दीनदार समझते हो और हमें दीन का बल्कि रिप्रेजेंटेटिव समझते हो और खुद भी हम अपने आप को समझते हो, अपने आप में बड़े बने फिरते होंगे हम बड़े दीनदार हैं, لیکن اللہ کی نظر میں یہ تو دینداری ہے ہی نہیں, یہ تو وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے. تو یہ تو پھر بہت جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ کل کو ہماری دینداری کا فیصلہ ہماری کانسیپٹس پہ نہیں ہوگا, وہاں پہ تو کوئی اور کس پیمانے پہ ہوگا, وہ اور ہی ہے. اور وہ کل جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے وہ کل بہت قریب ہے, اس کے لیے سورج ڈوبنے اور ویسٹ سے طلوع ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کل کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے, صرف ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. پچھلے دنوں یہ بچوں کو کہہ رہی تھی کہ صرف ایک سیکنڈ کی بات ہے, ایک سیکنڈ کی, ادھر یہاں سے آنکھ بند ہوئی ادھر کی آنکھ کھل جانی ہے, کہ قیامت کے آنے یا وہ کرنے کے انتظار کی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہیں سے بس شروعات ہو جانی ہے اور یہ آنکھ کسی وقت بھی بند ہو سکتی. اب اس سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں, ہماری کیا یہ وہی چیز ہے بھی جو اللہ کو چاہیے. اب ہم اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ دھوکہ دے رہے ہوں اور وہاں پہ ریجیکٹ کر دی جائے, یہ نہیں, یہ تو چاہیے ہی نہیں ہے, یہ تو کیا لے آئے ہو, اپنی خواہشات پہ چلتے رہے اور سوچا کہ ہم تو دیندار ہی بہت ہیں. تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے کیا ہے وہ چیز, آج ہمیں فکر کرنی ہے اس چیز کی, کیا ہے جو اللہ کو چاہیے وہاں پہ, وہ کیا وہی ہے جو میں آج کر رہی ہوں یا وہ کچھ اور ہے, میں کچھ اور سوچے بیٹھی ہوں. دیکھیں اب جیسے نفس کا تزکیہ, اب ہم جس پہ زیادہ زور دیتے ہیں نا وہ ہمارا ظاہر ہے, باطن کی ہمیں کوئی زیادہ نہیں فکر رہتی, جبکہ ہمیں قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا, جس نے اس نفس کو پاک کر لیا, اس کا تزکیہ کر لیا, اور جس نے تزکیہ کیا اپنے لیے کہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہا, کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے, تم نے اگر اپنے اندر کو صاف کیا نا اپنے ساتھ بھلائی کی. تو تزکیے کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا, اس کی نشو نما کرنا, اس کو پروان چڑھانا, یعنی پھر آگے اس کو گرو بھی کرانا, اس کو پہلے صاف کرنا پھر اس کو گرو کرانا, یعنی ایک سمپل ورڈز میں کہہ رہی ہوں. اب کیا یہاں پہ جب ہم دین میں تزکیے کے مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور غلط رجحانات سے اور ایسے گندے اعمال سے ہٹا کے یہ ہے صفائی, یہ ون پارٹ ہو گیا. میں نے آپ کو دوسرا پارٹ کیا بتایا, نشو نما دینا, پروان چڑھانا. پہلا پارٹ کیا تھا, صاف کرنا. تو جب گناہوں سے خود کو صاف کیا, کھرچ کے ان کو نکالا, پھر اس کے بعد پروان کیا چڑھایا, نیکی کو, خدا خوفی کو. تو ٹو پارٹس ہوئے پھر تزکیہ نفس کے نا, پہلے اپنا حساب کر کے دیکھنا میرے اندر کیا کیا برائیاں, ان کی صفائی کرنا, ان کو اندر سے صاف کریں. جیسے برتن کو صاف کر کے, ہم برتن کو کہاں سے زیادہ صاف کرتے ہیں, اندر سے کہ باہر سے, روز ہم برتن دھوتے ہیں, کدھر سے صاف زیادہ کرتے ہیں, باہر سے تو چاہے کالا بھی ہو ہم اندر سے بہت مانج مانج کے صاف کرتے ہیں, اندر نہ کوئی گندگی رہ جائے. لیکن جب ہم دین کا معاملہ آتا ہے, آپ کو نہیں کہہ رہی, میں تو اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم باہر کی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے, لوگ ہمیں ایسا نہ دیکھ لیں گے, ویسا نہ دیکھ لیں گے, ہمیں دیندار نہیں سمجھیں گے, اگر ہم نے یہ کر دیا, ہم نے ایسے نہ کر دیا تو وہ کہیں گے کہ اچھا یہ بھی نہیں کرتی, تو اس کی تو ہمیں اتنی فکر ہوتی, ہمارے اندر کیا ہے, گندے میلے کچیلے دل لے کے گھوم رہے ہیں, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. تو اندر سے یہ گند نکالنا, نمبر ٹو اپنا حساب کر کے یہ دیکھنا کہ مجھ میں کیا کیا اچھائیاں نہیں ہیں, پھر ان کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کی کوشش کرتے رہنا, یہ ہے نیکسٹ پارٹ, کہ نیکی اور خدا ترسی اور خدا خوفی, اس کو اپنے اندر پروان چڑھانا, نیکیوں کو, کون کون سے اعمال ہیں جو مجھے یہاں مجھے آخرت میں چاہیے ہوں گے, مجھے وہ اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اللہ, تو جس میں یہ خواہش پیدا ہو جائے نا کہ میں نے نفس کا تزکیہ کرنا, اس کی تو سب سے بڑی سوچ ہی یہ ہوگی کہ میں کیا کروں کہ میرا یہ گناہگار نفس گناہوں سے بچ جائے اور میں کیا قدم اٹھاؤں کہ یہ نیکیاں جو ہیں اس میں آگے بھاگے. یہ ہوگی اس کی سوچ پہ. پھر ہم دیکھیں نا ہماری جو بے فائدہ بے طرح ادھر ادھر ہماری سوچیں بھی ہیں اور محنتیں بھی ہیں اور کوششیں بھی ہیں, اس سب سے الگ ہو کے انسان یہ سوچے گا. تو پہلے تو سب سے یہ یقین ہو جانا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے مجھے جن باتوں سے روکا ہے ان سے اس لیے روکا ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دیں گی, مجھے تباہ و برباد کر دیں گی, مجھے تباہ کر دیں گی. اچھا اگر کوئی کہہ دے نا یہ تباہی ہے, اس کے اندر تم تباہ ہو جاؤ گے, آئے ہماری تو دل وہیں بیٹھ جاتا ہے, گناہ ہمیں لگتے ہی نہیں کہ یہ ہمیں تباہ کر دیں گے. اس لیے پہلے ہمیں اس چیز کا یقین اپنے اندر بٹھانا ہے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے لیے یہ یقین بٹھانا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عزتیں دلائے گا یہ کام. ٹھیک ہے نا, یہ جب تک نہیں یقین اندر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت پہ پورا سچے دل سے یقین ہو جائے نا کہ یہ میرے لیے چیز اچھی ہے, تبھی پھر ہم وہ کر سکیں گے. اور یہ میرے لیے چیز زہر ہے, زہر, یہ مجھے مار دے گی, تبھی ہم اسے بچیں گے. وہ رحوف رحیم ہے, اس نے میرے فائدے کی خاطر مجھے زہر کھانے سے روکا ہوا ہے, یہ نہیں کہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے میری بے پردگی کا, اس کو کیا نقصان ہے بھائی, لیکن مجھے نقصان ہوگا. تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں جو یہ کر رہی ہوں اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں, یہ میری تباہی ہونی ہے اس نے, اس لیے اس نے مجھے روکا ہے. وہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے, وہ کوئی مجھے مسئلے میں رکھنا چاہتا ہے, ہائے کیوں یہ حکم دے دیا, نہیں, اس کو زیادہ پتا ہے, وہ میرا فائدہ زیادہ جانتا ہے. ہم سب مائیں ہیں یہاں پہ بیٹھی, اور ہم اس بات کو سوچیں جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ چیز تمہارے فائدے کی ہے تمہیں. اچھا بچے کو نہیں نہ سمجھ آ رہی ہوتی کہ پڑھائی میں کیا فائدہ ہے, قرآن میں کیا فائدہ ہے, نماز پڑھنے میں کیا فائدہ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح بس یہ اس طرف آ جائے. اب ہمیں تو پتا ہوتا ہے, اس چھوٹے بچے کو نہیں پتا, اس کو اپنے نفع نقصان کا اتنا پتا ہی نہیں ہے نا. اب ہم اس کو بتا رہے ہیں اس میں ہماری کتنی خیر خواہی ہوتی ہے, اور ہم کیسے کیسے بس چاہتے ہیں کسی طرح, مطلب سب والدین چاہتے ہیں بس کسی طرح ہمارا بچہ نا بس کامیابیاں پالے, بس وہ ہر طرح سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو مل جائے. اب یہی بات سوچے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ اسی طرح ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں, اور ہم اس بچے کی طرح جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کا برین ہی نہیں ابھی ڈیولپ ہوا, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. ہم آپ اپنی جب آپ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا اور ان کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اندر سے بے چین ہو رہے تھے, اس وقت فوراً سوچا کریں اللہ بھی تو میرے لیے یہ چاہتا ہے, پھر میں بھی نہیں سنتی نا, میں کہاں سنتی ہوں, وہ بھی تو چاہتا ہے نہ یہ گناہوں میں پڑھیں, یہ بات مان لیں, لیکن میری سمجھ ہی نہیں آتی, مجھے میری سمجھ میں یہ بات جاتی ہی نہیں ہے, میری اپنی تاویل ہے, میں اسی کے پر اکڑی رہتی ہوں, اڑی رہتی ہوں. اور اس بچے کی جگہ پھر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیا کیجیے میں کس کس طرح کی تعویل کرتے ہیں. آدمی اپنے بچوں میں تو بڑا غصہ آتا ہے, مانتے نہیں ہیں یہ بات, یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں, ان کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی, میں ان کو سمجھا کے تک. تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھو, اللہ نے تمہیں کس کس طرح سمجھایا اس قرآن میں, تمہیں سمجھ آتی ہے؟ پہلے اپنے اوپر تو غور کرو. اگر آپ بچے کے ساتھ اتنا الجھتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں, تو پھر اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچنا, ٹھیک ہے بچہ تو نہیں آ سمجھ رہا, کم از کم میں تو سمجھ جاؤں, میرا اللہ مجھے کس طرح سے اپنے راستے کی طرف, کہ اس میں دنیا اور آخرت کی تیرے لیے بھلائیاں ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں پڑتی. ہم آج بچوں کو کہتے ہیں تمہیں نہیں بھی سمجھ آتی تو میری بات مان لو, اس میں تمہارے لیے کامیابی, نہ اس کو سمجھ آتی نہ ہمیں سمجھ آتی. اللہ بھی کہتا ہے تجھے نہیں بھی سمجھ آتی تو مان لے میری بات, اس میں تیرے لیے کامیابی, چاہے تجھے ساری زندگی نہ سمجھ آئے, لیکن ہماری کھوپڑی میں پڑتی نہیں بات, ہماری اپنی تاویلیں اور لاجکس ہیں جو ختم ہوتے ہی نہیں ہیں. کبھی آیتیں پڑھ پڑھ کے بھی, سورتیں پڑھ پڑھ کے بھی ہم نے حفظ بھی کر کر کے رکھ لی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی ہمیں, ہم نے گیو اپ نہیں کرنا ان چیزوں کو. ہم کیا بچوں سے شکایت کریں جب ہمارے خود کے حالات ایسے ہی ہیں, کیا کہیں آپ ان کو, کیا میں اور آپ انہیں کی طرح ایکٹ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. تو انسان کے لیے جو چیزیں مضر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو باز رکھنے کے لیے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے تاکہ انسان ان میں نہ جا پڑے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے کلام کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں اور دیکھیں گے کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان گنت بار انسان کو نیک اعمال کا اچھا انجام بتایا. دیکھو یہ میں تمہیں دوں گا اگر تم نے یہ کیا, برے اعمال کے برے انجام سے ڈرایا ہے, دیکھو اگر تم نے یہ کر لیا نا تو دیکھو اس کا یہ انجام ہے. حالانکہ انسان تیرے نیک بن جانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں, تیرے بد بن جانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں, جو ہم ابھی حدیث قدسی دیکھ چکے ہیں. تو یہ ہمیں سب برائی کے نقصانات بتانا اور بھلائیوں کے فوائد بتانا کس لیے؟ تاکہ ہم ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکال لیں اور بھلائیوں کی طرف آ جائیں. صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کے اندر یہ سب کیسے آ گیا تھا؟ حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے اپنا تزکیہ کرنا, کیونکہ ان کے اندر خدا خوفی تھی. ہم آج اس کام سے تزکیے سے بالکل غافل ہیں, اور اس لیے کہ ہم میں سے اکثریت یہ ماننے کو ہی نہیں تیار ہے کہ ہمارے اندر کوئی بری عادتیں ہیں, ہمارے اندر کوئی اخلاقی برائیاں ہیں. بس ہمیں لگتا ہمارے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اگر ہم میں سے کسی کے اندر کوئی نقص موجود بھی ہو اور کوئی بتا دے تو پھر ہمیں برا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہمیں سب ٹھیک ہے ہمارا. وہ تزکیہ نفس تو اس کا ہونا جس کے اندر کوئی برائیاں ہوں, کوئی نقص ہو, میرے اندر کیا برائی ہے؟ تو اسی لیے نفس کا تزکیہ صرف وہ انسان کر سکتا ہے جس میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ اپنی برائیوں کو دیکھ سکے, پھر اعتراف کر سکے کہ ہاں مجھ میں یہ برائی موجود ہے, ساتھ ہی اس کو اپنی فلاح اتنی پسند ہو کہ وہ ان کو دور کرنے کو تیار ہو, خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی اس میں تڑپ ہو. ایسا انسان تزکیہ کر سکتا ہے, ورنہ تزکیہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جس کو ظاہر اپنی برائیاں نظر ہی نہیں آتی, اس کو بتانے کا بھی کیا فائدہ, اور وہ کہاں دور کرے گا؟ پھر وہ تو یہ باتیں پڑھے گا بھی اور اس کو پڑھ کے آگے چلا جائے گا, اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ تزکیہ نفس جو ہے نا, یہ پریکٹیکل ایفرٹ کرنے کا نام ہے کہ انسان پہلے اپنا حساب کتاب لے, لکھ لے میرے اندر یہ یہ چیزیں, یہ یہ نقص موجود ہیں, اور کون کون سی چیزیں دوسرے پیج پہ لکھیں جو میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہ کچھ گوار کام نہیں ہے, یہ بڑا مزے کا کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے نا, اس لیے کہ ہم میں ہر ایک میں خود پسندی ہے, خود پسندی ہے. چاہے ہم جو جتنا بھی اپنے آپ کو کہہ لیں نا, لیکن ہمارے اندر ہوتی ہے یہ چیز. حضرت عمر کو تو اپنے نقائص جاننے کی اتنی خواہش رہتی تھی کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی ان کی ملاقات کو آئے تو ان سے کہنے لگے, اے سلمان مجھے وہ میری باتیں بتاؤ جو کہ بری ہیں میرے اندر, اور مجھے سچ سچ بتانا. حضرت سلمان نے کہا مجھے اسے معاف رکھیں. حضرت عمر نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے ضرور بتاؤ. جب بہت زور دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دسترخوان میں دو قسم کا کھانا ہوتا ہے اور آپ کے پاس دو کپڑے ہیں پہننے کے لیے, ایک دن کا اور ایک رات کا. یہ باتیں حالانکہ درست نہیں تھی. انہوں نے فرمایا اچھا یہ دو باتیں تو نہیں ہیں, کچھ اور دیکھا یا سنا ہو تو وہ بتاؤ. انہوں نے حضرت سلمان نے عرض کیا نہیں اور تو کچھ نہیں ہے. وہ بلکہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے, خدا اس کا بھلا کرے جو میری عیب میرے پاس تحفتاً بھیجتا ہے. مجھے وہ آدمی سب سے زیادہ پسند ہے جو مجھے میرے نقائص بتائے. ہم اول تو ایسی ضرورت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ تو میری برائی بتاؤ. اگر کسی دن آپ نے اپنے, سب سے زیادہ تو ہمارے گھر والے ہمیں جانتے ہوتے ہیں نا, باہر والے بیچاروں کو تو اتنا پتہ نہیں, وہ تو تعریفیں کرتے رہتے ہیں, ان کو کیا پتہ دیکھ دو گھنٹے کے لیے ملے, وہ کہتے نہیں جی بڑے آپ اچھے اخلاق کے ہیں اور بڑے آپ تو اچھے ہی انسان ہیں. اب گھر والوں سے پوچھیں, اگر انہوں نے کوئی بتا دیا اسی دن لڑائی شروع ہو جانی, آپ تو ایسے آپ نے تو مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. کہیں یہ بھول اپنے ہسبینڈ سے پوچھنے کہ یہ بات یہ نہ کریے گا, ان کو اسی دن لڑائی ہو جانی ہے. आपने अच्छा ये बात थी आपने मुझे ये कहा, क्योंकि हमारे अंदर वो हौसला ही नहीं है। बहुत मुमकिन है हमारे अंदर कोई बीमारी हो ऐसी, मसलन हसद की बीमारी हो, इसी वजह से हमें लोगों की बुराइयां ही नजर आती हैं, उसके अंदर ऐसा उसके अंदर ऐसा, क्योंकि हमारे अंदर हसद है, तय के अंदर ये चीज है, मगर हमें पता ही नहीं होता। बहुत मुमकिन है हमारे अंदर खुद पसंदी है, गरूर है, लेकिन हमें पता नहीं है। अब इसी वजह से हम लोगों की जरा जरा सी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और जरा जरा सी चीज हमें आपे से बाहर कर देती है। तभी हमें लोगों के ऐब बहुत ज्यादा नजर आते हैं ना, लोगों की चीजें बहुत नजर आती हैं उसकी बुराई, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सबसे ऊपर ही हैं, हमें हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं। और बहुत मुमकिन है कि हमारे दिल में दुनिया की इज्जत और जाह हासिल करने की शदीद तमन्ना, और ये जो बज़ाहिर अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए भी हमें ये ख्वाहिश बेचैन की रहती है कि हमारी अहमियत को तस्लीम किया जाए, हमें मेरी राय को तरजीह दी जाए, हमारी मेरी तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, क्योंकि मैं ये सारी इसलिए हो कि हुब्बे जाह है हमारे अंदर, ये जाह की हिरस है। वरना जिसका मकसद अल्लाह ताला की खुशनूदी है उसको तो परवाह ही नहीं होती कि मेरे जैसे आजिज इंसान की कोई बड़ाई तस्लीम करे या ना करे। ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर शक्की मिजाज हो, हम बदगुमान बहुत होते हैं, हम हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हमारे ताल्लुकात अपने साथियों से खराब रहते हैं और सारा इल्जाम हम दूसरों पे डाल देते हैं, वो ही बुरा है, उसके अंदर ऐसा उसके अंदर ऐसा उसके अंदर ऐसा, यानी हमारे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। ये हो सकता है हमारी इसी बुरी आदत की वजह से ये हो। ये भी हो सकता है कि हम जल्दबाज हैं, ना समझ हैं, जज्बाती इंसान हैं, और जिन मामलात के बिगड़ जाने का इल्ज़ाम हम दूसरों पे देते हैं, हर वक्त दूसरों के ऊपर लगाए रखते हैं उसकी वजह से ये मामला बिगड़ा, उसे वो दरहकीकत हमारी अपनी जल्दबाजी की वजह से हो, अनप्लैंड होने की वजह से और बदनज़मी की वजह से हो, ये सब हो सकता है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हमें हमारी खराबियां मालूम हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम अपनी इसलाह करें। बाज लोगों में खुद पसंदी इतनी होती है कि उनको जरा सी भी कोई बात कह दी जाए ना, उनको इतनी चुभती है कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, हाय मुझे ये क्यों कह दिया, मैं इतनी बड़ी चीज हूं मुझे ऐसा कह दिया, तो खुद पसंदी है। ऐसे लोगों को अगर जिंदगी में अपनी किसी गलती की माफी मांगनी पड़ जाए तो ये उनके लिए मौत से कम नहीं होता। तो ये चीज का इतराफ कर लेना कि मेरे अंदर कोई गलती है, और आजिज बन के उस गलती के ऊपर इजहार अफसोस करना और फिर उसको अपने अंदर से निकालना और ये करना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए बहुत हौसला चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए, और बार बार अपने आप को अपना हिसाब मुहासबा करना ये जरूरी है। लेकिन अगर मुझे अपना अंजाम ज्यादा महबूब है ना, लोगों की अच्छी राय से ज्यादा महबूब है, लोगों की तारीफों से ज्यादा मुझे अपने अंजाम की फिक्र है, लोगों की तारीफों की फिक्र नहीं कि वो मुझे मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे ये फिक्र है कि मेरा अंजाम क्या होता है, तो फिर जरूर मैं करूंगी। और इसके लिए हम क्या करें, मुहासबे का मतलब क्या होता है, हिसाब लेना, इसके लिए हम अपना खुद हिसाब करें। और इसको अगर हम हर रात इस एक्टिविटी को कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, वो तो बहुत ही अच्छा है कि कहाँ तक खराबियों को, पहले तो ये चीज कर ली ना कि मेरे अंदर कौन कौन सी खराबियां हैं, मैंने उनको निकालना, तो आज मैंने इस खराबी में से, मतलब एक आपने ले ली, मैंने इस खराबी में कितनी, मैंने इस चीज में कामयाबी हासिल किया कि मैं इसको आज के दिन इससे दूर रह सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दाना है, वो अक्लमंद है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। तो हम अपना इस तरह से हिसाब करें कि आज मैं कितनी हद तक इस चीज में कामयाब हुई। ठीक है, अगर मसलन मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो अपने आप से सवाल करूंगा आज दिन भर में इस गुस्से पे मैंने कितना काबू रखा, कितनी दफा मैं खामोश हो गई हूं, कितनी दफ़ा मैं तलख कलामी और गालम गलोच और इस तरह करने से मैंने सब्र किया है और खामोशी इख्तियार की है। अगर मुझे लगता है कि मेरे मिजाज में अपने आप को बड़ा समझने की बीमारी है तो गौर करें कि आज कहाँ तक मैंने ये चीज़ को जहन में रखा है कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह की है और बड़ा वही है जो अल्लाह की नज़र में बड़ा हो। और ये कोई बड़ाई नहीं कि मैं अगर लोगों की नजरों में तो बड़ी बनने की ख्वाहिश करूं और अल्लाह की नजरों में मैं जलील हो गई हूं। तो आज कहां तक ये बात, ये यकीन मेरे दिल में आया है और ये ख्वाहिश मेरे दिल में आई है कि ये अमन व आफियत के साथ गुमनाम रहना ज्यादा बेहतर है बजाय मशहूर होने के। अगर मुझे पता चलता है जुबान मेरी बेकाबू और मौका बेमौका मैं बेकार बोलती रहती हूँ, गौर करें दिन में कितने मौके ऐसे हैं जब मैंने इस फितने से अपने आप को रोक लिया, किसी को ताना नहीं दिया, किसी की चुगली गीबत नहीं की, किसी की बोतान दराजी नहीं की, किसी के ऊपर इफ्तरा नहीं बांधा, बेतहकीक बात को आगे चलाने की नहीं कोशिश की। मैंने कितनी आज ये कोशिश की है। ये इससे जब भी गुस्सा आया और दिल करे कि अब मैं गुस्से में आके किसी को अब कुछ सुनाती हूँ, बस अभी मैं फोन उठाऊं और किसी को सुना दूंगी, अभी मेरे से रहा नहीं जा रहा और मैं उसके घर पे जाके उसके दरवाजे बजा बजा के उसकी बेल तोड़ दूं उसके दरवाजे और उसके बाद उसको इतना सुनाऊं कि बस आज मुझे गुस्सा ही इतना, दो दिन सबर कर ले, कहें तीसरे दिन जाके करूंगी। दो दिन सबर करेंगे ना आप तो खुद ही आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फौरन उठ के और एकदम से करना, उससे एकदम से करने से क्या होगा, नुकसान होगा। आप देखेंगे खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज सबसाइड हो जाएगी। आप उसके कोई जिक्र किसी और के साथ ना करें, किसी और ऐसे के साथ ना करें जो आपको और भड़का दे। अच्छा उसने ये तुम्हारे साथ किया तो मैं तो उसके साथ ये करना चाहिए, उसने तो फलां वक्त में भी तुम्हारे साथ ऐसा किया, इतना भड़का दे कि अब आप और ज्यादा आपका जो यानी आग को और तेल डाल दे उस पर। वो ना करें, किसी से जिक्र ना करें, आप देखेंगे तीसरे दिन सही हो जाएंगे। अपने नफ्स को इस तरह मुतमईन करेंगे, नहीं आज नहीं करूंगी, दो दिन बाद करूंगी। याद रखिए शुरू शुरू में जब तस्किया नफ्स करना होता है ना तो काफ़ी मुद्दत तक रोज़ाना मायूसी होगी, काफ़ी मुद्दत तक। लेकिन अगर रोज़ अपना मुहासबा करते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाके ज़रूर चेंज आने शुरू होगी। हमें अक्सर ऐसा होता है, ये एहसास होता है कि हाय मेरे अंदर तो कुछ जरा भी नहीं चेंज आई, बस मुझे तो कुछ कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इससे डिसहार्ट ना हो, सब्र के साथ ये काम जारी रखे। और इसमें बाज दफा नागा भी हो जाता है, हम मसरूफ हैं, जल्दी आज जल्दी जल्दी कोई काम समेट के सो गए हैं, आज लेट नाइट तक बैठे रहे हैं, अब आज टाइम ही नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर नागा ना आने दें और रोजाना अपने आप से सवालात करें। और चाहे आपको जवाब अपने अंदर से यही आए कि मैं तो अभी वहीं की वहीं खड़ी हूं जहां से मैंने शुरू किया था, आज फिर वही हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, बस ये जारी रखना है। चाहे बहुत ज्यादा वक्त भी लग गया लेकिन एक दिन इसके पॉजिटिव जवाब मिलेंगे आपको अपने अंदर से। जब इंसान बार बार अपना जायजा लेता रहता है ना कि मैंने ये काम किया या नहीं किया, ये किया या नहीं किया, फिर अनकॉन्शियसली उसके अंदर पावर आ जाती है, पावर पैदा होने शुरू हो जाती है उस काम को करने की और जिससे बचना है उसे बचने की। तो बार बार सवाल के जवाब में नहीं 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 सुन के शर्मिंदा शर्मिंदगी तो जाहिर होती है, मगर इससे आगे बेहतर नतायज मिलने के चांस हैं। अदरवाइज तो फिर ऐसे ही रहेंगे हम हमेशा ही। तो क्या हम ये जरूरी है करना, इतनी तकलीफ दे चीज है तो क्या जरूरत है फिर करने की, क्या जरूरी है ये? इसका जवाब आगे तीन लफ्जों में अल्लाह ताला ने दे दिया, वइलल्लाहिल मसीर। याद रखो लौटना तो अल्लाह की तरफ है। नहीं करोगे आज तस्किया और ऐसे ही लेके अपने आप को चले जाओगे वहां पे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे जाहिर को नहीं देखना, उसने तुम्हारे बातिन को देखना, उसने तुम्हारे अंदर को देखना। जब अल्लाह के पास जाना है तज़किए के बगैर जाना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये ना सोचना कि ऐसे ही चले जाएंगे,